ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळियाडल पुराण की सातवां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
नमस्ते बच्चों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि शिवजी की लीला से मदुरई राजधानी और पांडी देश के लिए वैगई के रूप में नदी मिली। इस कड़ी में उस घटना को देखेंगे जिसमें शिवजी ने सात समुन्दर को मदुरई में प्रकट होने दिया।
सुंदर पांडियन और देवी तटातगई के विवाह के पश्चात कांचनमाला का मन हल्का हो गया। वह पहले से ही शिवजी की आराधना में अधिक समय बिताने लगी। उसने बहुत सारे मुनियों और तपस्वियों के बीच रहकर आत्मज्ञान की भी प्राप्ति की। परिणाम स्वरूप वह भी तपस्या करने लगी। एक मुनि ने बताया कि इस प्रकार की तपस्या के पश्चात समुद्र स्नान करना ही उचित होगा। अब कांचनमाला चिंता में पड़ गई। मदुरई नगर तो चारों ओरों से भूमि से घिरा हुआ था, तो समुद्र स्नान कैसे करती?
कांचनमाला ने अपनी पुत्री मीनाक्षी को बुलाया और कहने लगी, पुत्री, मुनियों ने मुझे यह सलाह दिया है कि समुद्र स्नान से ही मेरी तपस्या की परिपूर्ति हो सकती है। बताओ इसके लिए क्या उपाय है?
देवी तटातगई ने राजा सुंदर पांडियन से विनती की, हे प्रभु, आप सर्वेश्वर है, क्या आप मेरी माँ की याचिका को स्वीकार कर सकते हो? क्या वह समुद्र स्नान कर सकेगी?
महादेव प्रसन्न चित होकर कहने लगे, देवी, आपकी माँ तो पुण्यवती हैं, उनके लिए एक समुद्र क्या, सातों समुद्रों को प्रकट करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। यह कहकर संकल्प मात्र से भगवान शिव जी सप्त सागरों को बुला लिया। सातों सागरों को आदेश दिया कि वे सब अपने अंश से मदुरई नगरी की पूर्वी छोर में एक तालाब बनाएं।
सात समुन्दरों ने भी इस आदेश को पाला और वहां पर एक सुंदर तालाब बना दिया।
बच्चों, जानते हो हमारे पौराणिक ग्रंथों में सप्त सागरों के उद्भव के बारे में उल्लिखित है। यहाँ हम केवल उनके नामों का उल्लेख करेंगे। आप लोग क्षीर यानी दूध का सागर सुना होगा, जिसमें श्रीमन नारायण रहते हैं। बाकी के छह सागरों के नाम हैं नमक सागर, गन्ने रस का सागर, सोमपान, दही, घी और अमृत के सागर हैं। इन सारे समुद्रों के अंशों से एक पावन तालाब प्रकट हो गया। कांचनमाला बहुत आनंदित हुई। एक शुभ मुहूर्त पर सब उस तालाब के पास गए।
एक नई समस्या आन पड़ी। कुछ बुद्धिजीवियों ने आपत्ति उठाई कि कांचनमाला अकेले स्नान नहीं कर सकती, साथ में पति या पुत्र का होना आवश्यक है। दोनों की अनुपस्थिति में गाय के बछड़े की पूंछ पकड़कर तालाब में उतर सकती है।
राजमाता को बहुत दुख हुआ। तपस्या की पूर्ति के लिए आखिर उसे एक पशु की पूंछ का सहारा ही लेना पड़ा। देवी तटातगई ने माँ के मन की वेदना को पहचान लिया। वह भगवान सोम सुंदर से कहने लगी, हे नाथ, माँ के संताप को मुझसे देखा नहीं जा सकता, ना पति ना पुत्र, उसे कैसे मुक्ति मिलेगी? अपनी तपस्या की पूर्ति के लिए एक बछड़े का सहारा लेना पड़ रहा है, आप तो उसकी शोक को मिटा सकते हैं ना?
परमेश्वर ने कहा, देवी, आपकी माता तो मेरी भी माता है, उन्हें सद्गति देना मेरा कर्तव्य है। आपके पिता स्वर्ग से अवतरण करेंगे और माता की हथेली पर अपना हाथ रखकर दिव्य स्नान करेंगे।
कांचनमाला के आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी जब उसने अपने पति को आकाश से उतरते हुए देखा। मल्यध्वज पांडियन अपने दामाद से गले लगाया और पुत्री को भी आशीर्वाद दिया। राजमाता ने अपने पति के पैरों तले अपने मस्तक रखकर नमस्कार किया। राजमाता की मांग पर सिंदूर बराया गया। दोनों हाथों में हाथ लिए सप्त सागर तालाब में स्नान किए। आकाश से फूलों की वृष्टि हुई। माल्यध्वज और कांचन माला दोनों धन्य हो गए और सोम सुंदर पांड्यन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
राजा ने उन दोनों को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और उन्होंने उन दोनों को स्वर्गारोहण की अनुमति दी। दोनों ने पुत्री और दामाद को आशीर्वाद देकर दिव्य विमान में सवार स्वर्ग की ओर चले।
उसके पश्चात तटातगई और सोम सुंदर पांड्यन को एक सुपुत्र हुआ। दिव्य दंपति होने के कारण स्वयं कार्तिकेय भगवान का ही अवतरण हुआ। बच्चों, कुमार स्कंद तो सारे देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, इसलिए जन्म से ही उनकी भुजाएं स्वस्थ, दृढ़ और प्रबल थी, इसलिए उन्हें उग्र पांड्यन नाम रखा गया। देवी तटातगई के जैसे ही बालक उग्र पांड्यन को सभी तरह की शिक्षाएं दी गई। उनके पिता श्री ने उन्हें राजकुमार का राज्याभिषेक किया।
उग्र पांड्यन की वीरता चारों दिशाओं में फैल गई। सोम सुंदर पांड्यन ने उसे दिव्य शस्त्र दिए और कहने लगे, पुत्र आगे चलकर ये शस्त्र शत्रुओं को हराने में काम आएंगे, विशेषतः इंद्रदेव और वरुण तुम्हें संकट और कष्ट देंगे, अपने शौर्य से तुम इनको हरा पाओगे।
सोम सुंदर पांड्यन और तटातगई ने कांतिमती नामक एक सुंदर राजकुमारी का विवाह उग्र पांड्यन से कराया। उचित समय पर दोनों वानप्रस्थ आश्रम को अपना कर ज्ञान प्राप्त के लिए प्रस्थान हुए। स्वयं भगवान और जगत जननी होने के बावजूद इन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए ऐसा कदम उठाया।
इधर उग्र पांड्यन एक आदर्श राजा की तरह राज्य कर रहा था। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। 96 यज्ञों की पूर्ति होते ही इंद्रदेव को डर लग गया कि कहीं उसकी पदवी न खो जाए। उसने वरुण देवता को बेचकर मदुरई को प्रलय में निमज्जन यानी डुबा देने का आदेश दिया। वरुण ने भी ऐसे ही किया। उग्र पांड्यन ने पिताश्री के दिए हुए दिव्य शस्त्रों में से भाला को निकालकर बहुत दूर फेंका। भाला ने सब पानी को पीकर मदुरई नगर को बचा लिया। बच्चों, कार्तिकेय भगवान के हाथ में सर्वदा यह भाला रहता है, जिसे तमिल में बेल भी कहते हैं।
स्वयं शिवजी ने उग्र पांड्यन के ऊपर आक्रमण किया। दिव्य शस्त्र से ही उग्र पांड्यन ने इंद्रदेव के मुकुट को नीचे गिरा दिया। मित्रों, याद है ना, दूसरी कड़ी में हमने देखा था दुर्वास मुनि ने शाप दिया था कि उसके सिर की आपत्ति सिर के मुकुट के साथ मिट जाएगी। मुनि के वचन सच निकले।
एक बार मदुरई और आसपास के क्षेत्रों में घोर अकाल पड़ गया। पूरी राजकोष को खाली करने के पश्चात भी प्रजा की भूख नहीं मिटी। बहुत सालों से वर्षा का नामो निशान ही न था। पंडितों, मुनियों और बुद्धिजीवियों को चौल या चेर देश में जाकर रहने को कहा गया था। इससे ही ऐसा लगने लगा कि मानो मदुरई और पांड्य देश से सरस्वती और लक्ष्मी देवी एक साथ चली गई।
राजा बहुत चिंतित हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। शिवजी ने उसके सपने में आकर कहा कि अब मेरु पर्वत को ही हिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें हिमालय पर्वत तक जाना पड़ेगा। पर्वत राजा ने अपने पर्वत के नीचे बहुत सारे नवरत्नों और सोने की मुद्राएं छिपा के रखे हैं। तुम्हें जाकर मेरु पर्वत से उन नवरत्नों को मांगना होगा। अगर वह न माना तो आक्रमण करके ले आना होगा। उग्र पांड्यन ने भी उस आदेश का पालन किया। अपनी माता तटातगई के जैसे ही दिग्विजय पर निकला और मेरु पर्वत पर भी विजय पा लिया। वहाँ से प्राप्त किए गए निधि से अपने राज्य का एक बार फिर उद्धार किया। बच्चों, इस प्रकार शिव जी अपने पुत्र के द्वारा पांड्य देश की रक्षा करते रहे।